ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु वै भजो शिवराय जिनवानी के ज्ञान ते हो तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमी चंद आलाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उजासते ज्ञाने निज गुण थान सार को पाय के करिके क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अधिकार।
प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होने के पहले जो पांच लब्धि नियम से होती ही है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लब्धि की चर्चा शुरू करने से पहले हमने कर्मों की कुछ बातें देखी थी कि आठ तो मूल प्रकृति है और हर एक कर्म की अपनी अपनी उत्तर प्रकृति होती है, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा भी की थी। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतरा ये घाती कर्म है और वेदिनी आयु नाम और गोत्र ये अघाती कर्म है। हमने घाती कर्म की 47 प्रकृति देखी थी, टोटल घाती कर्म की 47 देखी थी। वैसे अघाती में भी हमने 101 प्रकृतियां देखी थी, 93 नाम कर्म की, वेदनीय की 2, आयु की 4 और गोत्र की 2। उसके पश्चात हमने उसमें सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृति कौन कौन सी होती उसकी भी विस्तार से चर्चा की थी और क्षयोपशम किस तरह से घटित होता है, पांच भाव किस तरह से घटित होते हैं, इसकी भी बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अभी हमने ये भी देखा था कि निषेक किसको कहना और स्पर्धक किसको कहना। ये जो निषेक और स्पर्धक की बात है तो स्थिति को बताने वाले वो तो उसको कहते निषेक, यानी जिन जिन परमाणुओं की समान स्थिति है और जो सत्ता में पड़े हैं और एक साथ में उदय में आकर निकलने वाले हैं उनको कहते हैं, उन परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। ऐसे सत्ता में क्रम से एक एक समय में जो खिरने वाले ऐसे निषेक है उनकी रचना हम आड़ी लाइन्स के द्वारा दिखाते हैं, एक के ऊपर एक नीचे दिखाते हैं, वो वर्तमान की लाइन दिखाते हैं और ऊपर जो दिखाते आड़ी आड़ी लाइन वो तो भविष्य के निषेक बताते। इस तरह सत्ता में तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक पड़े हुए रहते हैं, एक समय में उसमें से एक निषेक खिरता है। और अनुभाग में हमने देखा था कि जिसमें अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं ऐसा जो परमाणु, कौन से अविभाग प्रतिच्छेद, तो जो कर्म होगा उसकी अपनी अपनी जो शक्ति है उस शक्ति नापने का जो यूनिट है उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। तो विशिष्ट अविभाग प्रतिच्छेदों वाला जो परमाणु है उसको वर्ग कहते हैं और जिन वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद है उन सब परमाणुओं के समूह को हम वर्गणा कहते हैं। ऐसे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए जो वर्गणाएं हैं, पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, ऐसे जब तक अविभाग प्रतिच्छेद दुगुना हो जाता है तब तक के सभी वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहते हैं। तो अभी हम यहाँ स्पर्धक बताएंगे, जैसे यहाँ निषेक बताए वैसे स्पर्धक को हम ये गोला करके बताएंगे। ऐसे एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, सबसे नीचे अत्यंत हीन शक्ति वाला स्पर्धक बताएंगे और ऊपर तीव्र अनुभाग वाला ऐसे स्पर्धक ऊपर ऊपर बताएंगे, तो ये जो आड़ी लाइन हमने देखा ही है वो निषेकों की रचना कहलाती है, और ये जो हम गोले गले छोटे बताए वो स्पर्धक रचना है। अब हमने ये भी देखा था उत्कर्षण अपकर्षण के बारे में, वो अभी हम समझेंगे कि किस तरह से ये पूरा मोक्ष मार्ग किस तरह से है, अपकर्षण क्या है, वो कांडक घात कैसे होते हैं, इस सब की बात हमें अभी देखनी है, क्योंकि यही पारिभाषिक शब्द भी आने वाले हैं और उसको हमको समझना है। ये हम 54 पेज पर आए थे, 54 पेज में हम देखते हैं नीचे की लाइन जहां वो अपकर्षण और उत्कर्षण लिखा है, अभी हमने थोड़ा समझा था उसके बारे में, फिर उसको दोबारा देखते हैं। अपकर्षण किसे कहना और उत्कर्षण किसे कहना, अप यानी कम नीचे आना और उत् यानी ऊपर, तो उत्कर्षण यानी कुछ बढ़ता है और अपकर्षण यानी कम होता है, तो क्या कम होता है, तो ये अभी हमने जो स्थिति को बताने वाले निषेक की रचना दिखाई है उसमें से ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु, सभी परमाणु की बात नहीं, कुछ परमाणु उनकी स्थिति कम होती है, तो हम उसको बताते हैं कि ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आ गए यानी उनकी स्थिति घट गई, तो इसको हम कहते हैं अपकर्षण। उसी प्रकार जब अनुभाग कम हो जाता है और ऊपर के स्पर्धकों के कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब हम उसको कहते हैं अनुभाग का भी अपकर्षण हुआ, यानी अपकर्षण में दोनों ही घटते ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी जो मोक्ष मार्ग शुरू होता है तब स्थिति तो सबकी घटती है, प्रशस्त कर्मों की भी और अप्रशस्त कर्मों की भी, परंतु अनुभाग में तो अप्रशस्तों का घटता है और प्रशस्तों का बढ़ता है, इसलिए अपकर्षण कहते ही दोनों ही कम होते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है। यानी स्थिति घटती है उसको हम स्थिति का अपकर्षण कहेंगे, अनुभाग घटता है तो वहां वो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घट गया ऐसा हम कहेंगे। तो ये जो जीव के विशुद्ध परिणामों के द्वारा स्थिति और अनुभाग का घटना, इसको कहते हैं अपकर्षण। और वो स्थिति नीचे के निषेकों में से कुछ परमाणु ऊपर के निषेकों में आ मिलते हैं, उनकी स्थिति बढ़ जाती है, तब उसको हम कहते हैं उत्कर्षण। उसी तरह जिन स्पर्धकों के कुछ परमाणुओं में अनुभाग बढ़ जाता है उसको कहते हैं वो अनुभाग का बढ़ना, उसको भी हम उत्कर्षण कहेंगे। अब यहाँ पुस्तक में से पढ़ते हैं, ये अपकर्षण उत्कर्षण वाले फिगर उसके नीचे 54 पेज हिंदी में है, गुजराती में 52 पेज होगा। देखो, जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग घटता है, जब बांधा था तो विशिष्ट स्थिति के साथ बांधा था, परमाणुओं की विशिष्ट स्थिति थी और उसमें अनुभाग का बंध भी विशिष्ट हुआ था जब बांधा था तभी, और वैसे ही अभी वो सत्ता में पड़े हैं, सत्ता में पड़े हैं तब उसका कुछ फल भी नहीं मिल रहा है, तो सत्ता में पड़े पड़े ही उसमें कुछ विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है, उसमें जीव के भावों का निमित्त बनता है। यानी जीव के भावों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए जो कर्मों में उनमें क्या होता है, स्थिति और अनुभाग घटता है, तब उसको यानी उसको घटना जो है उसको कहते हैं अपकर्षण, तो इसको अपकर्षण कहते हैं। और जब बढ़ता है, क्या स्थिति बढ़ती है और अनुभाग भी बढ़ता है, तब उसको कहते हैं उत्कर्षण। यानी अपकर्षण में स्थिति की हानि यानी स्थिति कम होना, उसे चांद द्वारा समझाते हैं। तो अभी हमने जो निषेक रचना देखी थी वो ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, इसको कहना अपकर्षण। स्थिति तो उतनी जितनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि इतने यहाँ के निषेकों का अभाव नहीं हुआ है, यानी सत्ता की जितनी स्थिति है उतनी तो कायम रहेगी, उसमें से कुछ परमाणु नीचे आते हैं उनकी स्थिति घट जाती है। अब ये जो चार्ट द्वारा दिखाया है, निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना हो, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, चार्ट है ये, जैसे हम पेपर में देखते हैं या टीवी पर देखते हैं वो शेयर के बाजार भाव नीचे आ गए या रुपए का अवमूल्यन हो गया, तो ये भाव नीचे आ गया तो ऐसे लाइन से बताते हैं, पर हमारे तिजोरी के रुपए ऊपर से नीचे नहीं कहीं आ जाते। वैसे यहाँ कर्म जो है वो कहीं पर ऐसे कतार से खड़े नहीं है, माथे में वो भविष्य वाले निषेक हो गए और पैर में नीचे वाले वर्तमान के निषेक हो गए, ऐसा नहीं है। परमाणु तो सर्वत्र फैले हुए आत्म प्रदेशों में, परंतु जहां जहां के परमाणुओं में समान स्थिति होगी उन सभी के समूह को हम एक एक निषेक कह रहे हैं। यहाँ लिखा है देखो 55 पेज पर आगे वाले, कर्म परमाणु तो है वहीं पर रहते हैं, ऊपर नीचे दौड़ धूप नहीं करते। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत कम होती है तो उसे चांद द्वारा नीचे की ओर रेखांकित करके बताया जाता है, परंतु हमारे तिजोरी में रखे हुए रुपए के नोट ऊपर से नीचे की ओर नहीं लुढ़कते। अनुभाग के बारे में भी ऐसा ही समझना, यानी अनुभाग हम किस में बताते हैं, स्पर्धकों में। पर जब जब स्पर्धक कहते हैं तो ऐसा ख्याल में ले लेना कि एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणाएं होती है और एक एक वर्गणा में अनंत वर्ग यानी कर्म परमाणु होते हैं। यानी जब स्पर्धकों का अनुभाग घटता है तो कथन आता है कि ऊपर के स्पर्धकों में से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धकों में आ मिले, उसका अर्थ यह समझना कि उनका अनुभाग कम हो गया। अब ये निषेकों की रचना अलग है और अनुभाग की रचना अलग है। ऐसा नहीं समझना कि ऊपर के निषेकों में अधिक अनुभाग है और नीचे में कम है। जिस निषेक में सभी प्रकार के परमाणु होंगे, कम अनुभाग वाले या अधिक अनुभाग वाले, और वहाँ अपना अपना अनुभाग जिसकी जो स्थिति है, जीव के विशुद्ध परिणामों के कारण अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग वहाँ वैसा घटेगा, उसकी तो चर्चा विस्तार से आने वाली है आगे लब्धि के प्रकरण में। ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रहकर उनमें से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। क्या लेना, अब ये निषेक तो अपनी अपनी जगह कायम है, स्पर्धक अपनी अपनी जगह कायम है, परंतु यहाँ अनंत परमाणुओं का समूह है, वो उसमें से कुछ परमाणु नीचे आते हैं। निषेक तो वहीं पर बना रहता है, यदि निषेक नीचे आ जाता पूरा तो स्थिति घट जाती, परंतु निषेक वहीं पर है, सत्ता में जो निषेक है वे वहीं पर है, उनमें से कुछ ही परमाणु नीचे आए, यानी कुछ परमाणुओं की स्थिति घट गई, पूरे निषेकों का अभाव होकर वो नीचे नहीं आए। वो जब आते हैं तो उसका अलग नाम है, उसको भी देखेंगे। देखो अब उसकी बात आएगी, अभी उसको देखने के पहले हम ये देखते कि ये अपकर्षण की बात तो ख्याल में आई, परंतु उत्कर्षण में क्या होता है कि वहां नए बंध की अपेक्षा होती है, उसको हम समझेंगे, पाठी पर समझते हैं उसको। ये बोर्ड पर अभी हमने जो लिखा है निषेक जो है एक एक करके, हमने एक एक समय वाला एक एक निषेक देखा है, यहाँ लिखा है जैसे विशुद्ध परिणामों के द्वारा उसकी स्थिति घट जाती है, परमाणुओं की स्थिति घट जाती है, वैसे अपने आप परमाणुओं की स्थिति नहीं बढ़ती। तो कब बढ़ सकती है, तो परमाणुओं की अभी यहाँ जो वर्तमान समय में यहाँ कोई नया बंध होगा तो ये उसकी निषेक रचना है, आबादा काल छोड़कर ऊपर उसके निषेक होते हैं। तब पूर्व की जो निषेक रचना में से नए बंधने वाले निषेकों में कुछ परमाणु ऊपर चले जाते हैं, तब उसको उत्कर्षण कहते हैं। यदि उस प्रकृति का बंध नहीं होता हो तो उत्कर्षण भी नहीं होता। अपकर्षण होने में ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसे कोई नियम नहीं है। अपकर्षण तो जीव के विशुद्ध परिणामों के कारण वो अपकर्षण होता रहता है, परंतु उत्कर्षण होने में नए बंध की अपेक्षा आती है। तो जिस प्रकृति का बंध होता हो और उसकी आबादा जितनी बड़ी है तो उसके ऊपर जितने निषेक है, तो यहाँ के जो नीचे के लेवल के निषेकों में कुछ परमाणु यहाँ ऊपर चले जाते हैं, तब उसको कहते हैं उत्कर्षण हुआ। वैसे इसमें भी समझना, यानी स्थिति बढ़कर ऊपर चले जाते हैं तब उसका उत्कर्षण होता है। अब ये तो हमने सामान्य उत्कर्षण अपकर्षण की बात देखी, अब विशेष कोई बात होती है उसकी भी अब चर्चा करते हैं। अभी जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, इसको कहते हैं कांडक घात। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कांडक घात। कांडक यानी टुकड़ा। उसमें क्या होता है कि अनेक निशिक, पहले तो हमने देखा था कुछ परमाणु नीचे आते हैं, अब जब कांडक घात देखेंगे तो अनेक निशिक, अनेक यानी कितने, दो चार पांच नहीं, सागरों के निशिक। क्योंकि कर्म सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उसमें तो कोड़ाकोड़ी सागरों के निशेक, अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निशेक पड़े हैं सत्ता में। अब उसमें से अनेक सागरों के निशेक, अभी एक समय में कुछ परमाणु, दूसरे समय में कुछ, ऐसे पूरे के पूरे निशेक ही नीचे आ जाते हैं, निशेकों का ही अभाव हो जाता है और स्थिति सागरों की एक छोटे अंतर्मुहूर्त में घट जाती है। हम मान लेते हैं दस समय में, पहले समय में कुछ परमाणु आए, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, इस तरह से यहाँ जितने सारे निषेक थे, अभी हम मानने के लिए मानते हैं कि दस सागर मान लेते, तो दस सागर में प्रत्येक समय में एक एक निषेक खिर जाता। अब उतने सारे निषेक दस समय में नीचे आ गए, यानी इतनी स्थिति घट गई, सत्ता में पड़ी हुई कर्मों की सत्ता में वो जो है, वो स्थिति जो है वो इतनी सारी घट गई, तो उसको कहते हैं कांडक घात। कांडक यानी टुकड़ा। कौन सा कांडक हुआ है, अभी हम स्थिति की बात चल रही है तो इसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। उसी तरह स्पर्धकों में भी जो तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक है, तो तीव्र अनुभाग वाले अनेक स्पर्धक जिसको कहते अनंत उसमें आते हैं, तो उसका अभाव होकर इनके सारे परमाणु नीचे के स्पर्धकों में आ मिलते हैं और तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक जीव के सत्ता में रहते ही नहीं, तब उसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। यानी अनेक स्पर्धकों का यहाँ कांडक यानी टुकड़ा होता है, और स्थिति में हमने देखा था अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहा, कांडक यानी टुकड़ा। तो बहुत बड़ा टुकड़ा, उसका अभाव हो जाता है, स्थिति कम होती है, और अनुभाग कांडक घात में अनंत जो स्पर्धक है तीव्र अनुभाग वाले, उनका सत्ता में से नाश होता है और वो मंद अनुभाग वाले बन जाते हैं। अभी जीव की सत्ता में ही है कर्म परमाणु, जीव को छोड़कर गए नहीं है, किंतु सत्ता में पड़े पड़े उनकी स्थिति भी घट जाती है और उनका अनुभाग भी घट जाती है, तो उसको कहते हैं अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात। अभी इसको पढ़ेंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। अब जहाँ पढ़ रहे थे ना हम, उसके नीचे नीचे से दूसरा पैराग्राफ बढ़ा 55 हिंदी में, ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रहकर, ये हमने अपकर्षण की बात देखी थी, सामान्य अपकर्षण की, कि वहां तो निषेक अपनी अपनी जगह रहे थे और उसमें से कुछ परमाणु नीचे आए थे, तो ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रहकर उनमें से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। ये तो हमने सामान्य अपकर्षण की बात देखी, परंतु विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से, देखिए इसके साथ जीव के भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, ना जीव कर्म में कुछ करता है ना कर्म जीव को कुछ करता है, तो कर्म का उदय आया इसलिए जीव को ऐसा भाव करना पड़ा, ऐसी पराधीनता यहाँ नहीं है। तो जीव के जैसे परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं, जीव तत्व विचार में लग जाता है, तो पूर्व में जो बांधे हुए तीव्र अनुभाग वाले कर्म वो भी घट जाते हैं, उसका भी अनुभाग मंद हो जाता है, मंद होकर उदय में आने लगते हैं। ये कैसे होता है वो सारा अभी लब्धि के प्रकरण में आने वाला है क्रम से, कि विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर जब उनके सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, यानी अपकर्षण में हमने देखा था कुछ परमाणु नीचे आते हैं, निषेक बने रहते हैं और स्थिति भी उतनी बनी रहती है, परंतु ये जो कांडक घात चल रहा है उसमें अनेक निषेक ही नष्ट हो जाते हैं और निषेकों के सभी परमाणु नीचे आ जाते हैं। नष्ट होना है ना, उतनी स्थिति नहीं रहना, परमाणु तो रहेंगे वहां पर, परमाणु अभी जीव की सत्ता में ही पड़े हैं, परंतु उनकी स्थिति घट जाती है, तो उन निषेकों का समूह नष्ट होकर जब उनके सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, तब तो उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। कांडक यानी टुकड़ा, घात होना यानी अभाव होना, और स्थिति का होना, स्थिति का कांडक का घात होना, यानी ये कार्य करने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है। और उसमें कितने निषेकों का नाश हुआ, अनेक सागरों के। प्रायोगलब्धि के प्रकरण में आने पर हम देखेंगे कि अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों का पूर्व में बांधा हुआ जो कर्म होगा वो घटकर अंत कोड़ा कोड़ी रह जाता है। अंत कोड़ा करने कोड़ा कोड़ी के भी नीचे एक कोड़ा कोड़ी से भी कम होता है। और बांधा था कितना, वो हो सकता है 70 तक, कितना भी पूर्व में पड़े हो, सत्ता में पड़े हुए की बात। तो जो सत्ता में अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों का बंध किया था, उसकी स्थिति पड़ी थी, वो घटकर इतनी रह जाती, कितने एक छोटे अंतर्मूर्त में ये कार्य हो जाता है। इसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। ये तो स्थिति के बारे में हुआ, अब अनुभाग के बारे में भी देखेंगे। जब ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी परमाणु नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। यानी जो अप्रशस्त पाप प्रकृतियों में तीव्र अनुभाग था, वो घटकर मंद अनुभाग बन जाता है उनमें। यानी पाप जो पहले बांधा था तीव्र, उसका उदय कैसे होगा, मंद होकर वो उदय में आएगा। सत्ता में पड़े पड़े उसमें ये सारा परिवर्तन होता है, और उसमें जीव के विशुद्ध परिणाम निमित्त है। अभी विशुद्ध यानी वितरागता वाले नहीं है, उसके पहले की बात है, तभी से स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात शुरू हो जाता है। विशुद्ध का अर्थ आएगा अपना, विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में हम देखेंगे उसको, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। देखो यहाँ एक बात समझनी चाहिए थी, आगे के पैराग्राफ, यह बात ठीक से समझ लो कि कांडक घात द्वारा कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं, परंतु कर्म नष्ट नहीं होता, वह अकर्म रूप नहीं होता। ये कर्म जीव को जो हम कहेंगे उदय हुआ या निर्जरा हुई, तब तो कर्म से अकर्म दशा होती है। जैसे कारमाण वर्गणा से कर्म रूप दशा हुई थी, जब उसका उदय आता है, स्थिति पूरी होती है, तो जीव को फल मिलता है, वो कर्म से अकर्म हो जाते हैं। वो अन्य कारमाण वर्गणा रूप हो जाएगी, या अन्य वर्गणा रूप हो जाएगी, या सिंगल परमाणु हो जाएगी, उसके अपनी जो योग्यता अनुसार वो कर्म में परिवर्तन होगा। परंतु अभी उसको हम जीव का कर्म नहीं कहेंगे, हम उसको यानी जीव के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध अभी नहीं बनेगा। जब हम कहते ना कर्म बांधा कर्म छोड़ा, तो प्राथमिक भूमिका में कैसे समझते, बाहर से आए और यहाँ से चले गए। परंतु ऐसा नहीं होता, वो जीव के प्रदेशों में वहीं पर चिपके रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि वो वहां से निकलकर और कहीं एक दो चार मील दूर जाएंगे। तो उसको हम चिपके रहते हैं, तो उसको विस्तृतोपचय कहते हैं। एक एक कर्म परमाणु के साथ अनंत अनंत अन्य परमाणु ऐसे ही चिपके हुए आते हैं, उससे अपना कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये अनंतानंत एक एक परमाणु के साथ, और ऐसे कितने परमाणु हैं सत्ता में, अनंतानंत परमाणु, और हर एक के साथ अनंतानंत ऐसे ही परमाणु चिपके हुए रहते हैं। कभी कभी उसी में से नया कर्म बनता है, और कभी कभी तो उसमें से कुछ लेना देना नहीं है, तो उससे कुछ जीव का निमित्त नैमित्तिकपना नहीं बनता। यानी पुद्गल है इसलिए जीव से निमित्तपना बनता, ऐसी बात नहीं। जब जीव के राग द्वेष मोह परिणामों के कारण वही के परमाणु अपना पहली अवस्था छोड़कर कर्मरूप अवस्था धारण करते हैं, तब उसको हम कर्म कहते हैं। और निमित्तपना कब बनता है उनका, जब वो उदय में आते हैं, जब उनका फल मिलता है, तब वो जीव के परिणामों के साथ उनका फिर से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। यानी वो कर्म नष्ट नहीं होता। अभी हमने जो ये बात देखी है कि कांडक घात होता है, यानी उनकी स्थिति घट गई परमाणुओं की, और अनुभाग भी घट गया, किसमें, अप्रशस्त में। परंतु अभी वो जीव की सत्ता में है, वो छोड़कर गए नहीं है, पड़े पड़े उनमें इतना सारा परिवर्तन हो जाता है। नीचे के निषेकों में परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि ऊपर से नीचे आ जाते हैं सारे परमाणु, इतने सारे परमाणु नीचे आएंगे तो यहाँ के ये निषेकों में जितने परमाणु थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ भी स्पर्धकों में, एक एक स्पर्धकों में जितने वर्गणाएं और वर्ग थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, परंतु संख्या बढ़ने से उसका अधिक फल मिलेगा ऐसा कोई मानता है तो ऐसी बात नहीं है। जीव को जो फल मिलता है वो कर्म परमाणु की संख्या पर निर्भर नहीं होता, उसमें अनुभाग कितना है उस पर उसका फल मिलता है। और हम यहाँ देखते हैं कि अनुभाग कांडक घात में अनुभाग अत्यंत मंद हो जाता है, अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग ऐसा अनुभाग होता है अप्रशस्त पाप कर्मों में, तो उसका फल भी मंद होगा और कर्म तो अधिक मात्रा में आएंगे नीचे। आगे मोक्ष मार्ग जब प्रकट होगा तब तो ये तो और बातें अधिक स्पीडीली हो जाएगी कि निषेक जो नीचे खिरने वाली परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है और अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग मंद मंद होता जाता है, यानी परमाणु तो अधिक खिरते हैं और उसका पाप का फल कम मिलता है और पुण्य में उल्टा होता है। ऑर्डिनरी पुण्य बांधा है तो भी मोक्ष मार्ग में आते ही उसका अनुभाग बढ़ता चला जाता है। पाप और पुण्य में यहाँ अनुभाग में रिवर्स है, स्थिति तो दोनों की घटती है, पाप प्रकृतियों की भी स्थिति घट जाती है और पुण्य कर्मों की भी स्थिति घट जाती है, परंतु अनुभाग में पाप कर्मों का अनुभाग तो घटता है, मंद होकर उदय में आता है, और पुण्य कर्मों का अनुभाग बांधा तो थोड़ा था वो बहुत बढ़ जाता है और बढ़कर उदय में आता है, यानी उसको बहुत अधिक फल मिलता है। अच्छा है ना, उसमें अच्छेपने की मान्यता होगी तो उसका तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो प्रागलब्धि तक भी जा सकता है परंतु आगे नहीं बढ़ेगा, ख्याल है ना। तो परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इस तरह से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घट जाती है, उनकी फल देने की शक्ति भी हीन होती है। किसमें, ये अप्रशस्त में समझना, प्रशस्त में फल देने की शक्ति बढ़ जाती है, उनका फल बढ़ जाता है। और अन्य भी अनेक परिवर्तन होते हैं कर्मों में, जिसकी चर्चा हम जहां अपना विषय चलेगा एक एक लब्धि का, और एक एक लब्धि के प्रकरण में जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं उसकी हम वहां चर्चा करेंगे। देखो अब अगला वो पत्रांक 5 चालू करते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रता। प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किसे होगा इसकी बात यहाँ हमारी चलेगी, क्योंकि ये तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पूर्व जो 5 लब्धि होती है उस संबंधी हमारी यहाँ चर्चा चल रही है। आपका क्या प्रश्न था? हाँ बराबर, अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्मों के नाम तथा सामान्य जानकारी और कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखने के पश्चात अब हम मूल विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मूल विषय ने अपना पंचलब्धि का विषय, क्योंकि अभी तक तो हम तो अन्य ही सब चर्चा कर रहे थे, कौन सी कर्म की मूल प्रकृति कौन सी है, उसका बंध यानी क्या होता है, उदय यानी क्या होता है, वो पड़े पड़े उसमें कौन से परिवर्तन होते हैं, निषेक क्या है, स्पर्धक क्या है, यानी ऐसा लगता था कि एक कर्मकांड की बात चल रही है लब्धिसार छोड़कर। तो पूर्व पीठिका में ही लंबी चर्चा हो गई, परंतु वह आवश्यक ही थी, यह बात आगे चलकर तुम्हारे ख्याल में आएगी ही। पत्रों द्वारा तो हम अत्यंत स्थूल चर्चा करेंगे, ये जो पत्र है इसमें से तो सामान्य जानकारी है, मूल ग्रंथ पढ़ने के लिए आसान हो इसलिए कुछ पारिभाषिक शब्दों की तथा यहाँ जो लब्धि संबंधी जो सामान्य जानकारी है उसकी चर्चा है। इन विषयों की सूक्ष्म चर्चा गोमठसार लब्धिसार धवला आदि ग्रंथों में से जानना योग्य है, यानी ये पुस्तक कुछ ग्रंथ नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको पढ़कर तो ये तो थोड़ी हमारी पहचान हो जाती है ना शब्दों के साथ, तो हमारा डर निकल जाता है। नहीं तो बड़े ग्रंथ कभी ऐसा हो जाता है कि बड़े ग्रंथ निकल कर पढ़ने लगते हैं और फिर समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ देते हैं, रुचि हो जाती है। तो कितने हमारे भाई तो हमें जिसको सामान्य ग्रंथ लगते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, रत्नकरण शौकाचार्य है, चढ़ाला है, तो हमें तो आसान लगते हैं, परंतु जिनका तत्वज्ञान का बिल्कुल अभ्यास नहीं है ऐसे तो वो निकालते हैं, दो चार पन्ने पढ़ते एक आध दूसरा चैप्टर हो जाता है और फिर इतना वो कठिन लगने लगता है कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनको पढ़ने की रुचि नहीं है, परंतु ये जो द्रव्य गुण पर्याय क्या है इसी का पता नहीं है, या जो सामान्य शब्द आते हैं पारिभाषिक शब्द जिसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी, वो मालूम नहीं है तो ऐसे ही वो ग्रंथ छूट जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं हमको बताने वाले कि हमको तो बहुत इच्छा है, हम निकाल कर पढ़ने भी बैठ जाते हैं पर कुछ नहीं समझता है इसलिए अभी छोड़ देते। तो यहाँ हमारा प्रकरण पंच लब्धि का चल रहा है, तो ये जो लब्धि तो लब्धि है क्या उसकी भी चर्चा हम ये इसमें कर रहे हैं। तो लब्धि का अर्थ है प्राप्ति या लाभ, यानी कुछ उपलब्धि, कुछ हासिल होना, उस सुख के लिए ही कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ व्यापार धंधा करता है, जो कुछ क्रियाएं वो करना चाहता है सुख के लिए करता है, ये बात अलग है उसको सुख मिलता है या नहीं मिलता ये बात अलग है, मगर वो चाहता तो सुख है। तो हमारी उपलब्धि कब कहलाएगी, जब हम सुखी होंगे। तो अनंत सुखत्व की प्राप्ति में ही हमारा लाभ है और मोक्ष अनंत सुख स्वरूप है और उसकी प्राप्ति होना ही सच्ची लब्धि कहलाएगी। अब उसके प्राप्ति का उपाय क्या है, तो संवर और निर्जरा है, वह भी सुखरूप है। देखो जो वस्तु यानी जो मोक्ष अवस्था जो सुखरूप है, तो उसकी प्राप्ति का उपाय यानी जो मोक्ष मार्ग है वो सुखरूप ही होना चाहिए। हमें लगता है कि नहीं नहीं वो इतना कष्ट सहन करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, पहले बहुत कष्ट करो तो फिर आनंद की प्राप्ति होगी, तो ये न्याय बराबर नहीं बैठता, क्योंकि जो स्वयं सुखरूप है उसकी प्राप्ति में थोड़ा तो सुख आना ही चाहिए, भले अनंत सुख नहीं आवे तो भी सुख की शुरुआत तो मोक्ष मार्ग में से ही होने वाली है। तो ये जो उसका उपाय जो संवर और निजरा है वह भी सुखरूप है। देखो हमारी मान्यता ही आज तक वो गलत थी, पहले हमने मोक्ष सुखरूप है सुना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा हमारा सुख यहाँ है, एसी में बैठे खाने पीने को अच्छा है, कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, ये हम सुखी है, तो मोक्ष में हम बहुत इससे अधिक सुखी होंगे, यानी कंपेयर ये हमारा लौकिक सुख से हम उसको सुख को कंपेयर करते हैं, हम यहाँ सुखी है देव हमसे सुखी है और मोक्ष वाले उनसे भी सुखी है, परंतु ऐसा सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय यानी आत्मिक सुख है। हमने जो परवस्तु से सुख मान रखा है ये हमारी गलत मान्यता है, वैसा सुख नहीं है मोक्ष में। मोक्ष में तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख है, और जो ऐसा सच्चा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है मोक्ष में उसके प्राप्ति का उपाय जो संवर निजरा है वो भी सुखरूप है। लोगों की क्या मान्यता, अरे वो मुनि है ना इतना कष्ट सहन करते हैं, यानी मुनि के स्वरूप को उन्होंने सच्चा नहीं जाना, जैसे मोक्ष तत्व को नहीं जाना वैसे जो संवर निर्जरा का जो स्वरूप है वो सुखरूप है, मुनि अवस्था भी सुखरूप है, प्रचुर स्व संवेदन है वहाँ, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करने वाले है मुनि, परंतु हमने आज तक वैसा माना ही नहीं है। मुनि अवस्था को कष्टदायक माना, यानी ये उसकी संवर और निर्जरा तत्व संबंधी भूल चल रही है। ऐसे एक एक तत्व में अभी राग द्वेष है तो दुखकारी, आश्रव बंध तो दुखरूप है, दुख का कारण है, और हम उसको कैसा मानते हैं सुखरूप है। अभी हम पुण्य करेंगे तो हम जरा सुखी होंगे, संयोग अच्छे मिलेंगे, यानी हमने राग द्वेष को आश्रव तत्व को सुखरूप माना है, सुख का कारण माना है। हमारा स्वरूप मैं तो चैतन्य हूँ, परंतु ये पुद्गल को ही आज तक हमने यह मैं हूँ माना है, यानी ना 6-7 तत्वों की हमें खबर है और नहीं 6 द्रव्यों की। रट तो लिए हमने इस विश्व में 6 द्रव्य है, परंतु माने क्या हमने आज तक, एक पुद्गल है यही मैं हूँ ऐसा माना है, यानी इसको जानने वाला मैं दीपन कोई जुदा हूँ ये भी इसने नहीं माना है। तो इस तरह से ये 6 द्रव्य 7 तत्व और जो कुछ पदार्थ है इसमें ये गलत मान्यता हो रही है इसकी, इसलिए इसको ये सच्चे सुख की प्राप्ति यानी लब्धि नहीं हो रही है। जितना जितना आश्रव और बंध कम होगा, आगे के पैराग्राफ, उतना उतना दुख कम होगा। क्यों? क्योंकि आश्रव और बंध है ही दुखरूप। देखिए संवर और निर्जरा सुखरूप है। तो जितना संवर होगा, हमने देखा था बंध की हानि होना वो संवर है। जैसे बहुत प्रकृतियां बनती थी अभी कम बंधने लगी, बहुत अधिक मात्रा में वो स्थिति बनती थी वो भी कम बंधने लगी, परमाणु की संख्या भी बहुत अधिक मात्रा में बनती थी, यानी वो सभी प्रकार का बंध घटने लगा, उसका अनुभाग भी तीव्र बनता था, ये सभी प्रकार का बंध घटने लगा तो ये संवर हुआ वहां। तो संवर सुखरूप है और ये जो आश्रय और बंध कम होगा उतना दुख कम होगा। क्योंकि हमने वो छड़ाला में भी है ना, रागादि प्रकट ये दुख देना, तो राग कम हो रहे हैं तो उतनी आकुलता भी हमारी घट रही है, उतना उतना सुख का वेदन भी चल रहा है। तो आश्रय और बंध का कम होगा, कम होना उतना ही दुख का भी कम होना है। कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना अर्थात विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है। ये बात तो आगे आएगी, विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुकता जाएगा जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ता है, ऐसे वैसे विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुकता है। जीव पहले में पहले मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन प्राप्त करके चौथे धुन स्थान में जाता है तब उसके 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। हमने पहले देखा था कि बंध योग्य प्रकृति 120 है, 120 का हिसाब लगाएंगे, टोटल प्रकृति 122 है, याद है ना। तो उसमें से दो तो बनती ही नहीं है, बंधने वाली नहीं है, तो बंधने वाली कितनी है? 120 है। अब मिथ्यात्व अवस्था में बंधने वाली कितनी है? तो तीर्थंकर और आहारद्विक तो मिथ्यात्व जीव को नहीं बनती है, वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद ऊपर के गुणस्थानों में बनती है। तो उसको कहते कि 117 बंध योग्य है। अभी इतनी सारी प्रकृतियों में से चौथे गुणस्थान में जाते ही 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कितना सारा बंध रुक गया? अब चौथे में से पांचवे में जाएगा तो और 10 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा, यानी पहले से पांचवे में जाएगा या कहीं चौथे में से भी पांचवे में जाएगा तो कितने प्रकृति? अभी 51 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। छठे में जाएगा तो और 4 प्रकृति कम हो गई, सातवें में जाएगा तो और 6 प्रकृतियों का बंध और घट गया, यानी सातवें में जाने वाले के और 61 प्रकृतियों का बंध रुक गया। 117 में से 61 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। जो आठवें में चला जाता है उसकी और एक प्रकृति घट गई, सातवें में देवायु का बंध भी रुक जाता है। आठवें से नौवें में जाता है तो 36 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। फिर नौवे में से दसवें में जाता है तो और 5 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। दसवें में से ऊपर चला जाता है तो और दसवें में 16 प्रकृतियों की बंध रुक जाता है, यानी ग्यारहवें में एक ही प्रकृति का बंध है, बारहवें में भी एक ही प्रकृति का बंध है, तेरहवें में भी एक ही प्रकृति का बंध है, सातावेदनीय बनती है और वहां उसका भी बंध रुक जाता है। तो चौदहवें में कोई बंध नहीं है, पूर्ण रूप से संवर हो गया, सभी प्रकार का बंध रुक गया, ये अबंध दशा हो गई पूर्ण रूप से। और वहां ही चौदहवें के अंत में पूर्ण रूप से निर्जरा होकर जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। ये कर्मों का बंध इस तरह से घटता चला जाता है और निर्जरा भी बढ़ती चली जाती है। तो लिखा है ना कि जितना जितना आश्रय और बंध कम होगा उतना उतना दुख कम होगा। कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना अर्थात विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है। और पूर्व बद्ध कर्मों के सत्व की हानि होना, यानी जो ऑलरेडी बांधे है पहले में, अलग अलग अनेक कर्म प्रकृतियां हमने बांधी है विविध प्रकार की, तो उसकी सत्ता की हानि होना अर्थात कर्मों का अधिक प्रमाण में खिर जाना, उसको निर्जरा कहते हैं। यह कार्य सम्यक दर्शन और अधिकाधिक आत्मस्थिरता द्वारा अर्थात चारित्र द्वारा होता है, किसी भी उच्च प्रकार के शुभ भाव द्वारा संभव नहीं है। क्या कहते हैं? बहुत शुभ भाव किया, मुनि योग्य दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली मिथ्यात्व अवस्था में हो, और उतने ही में मेरा कार्य हो गया, अभी मुझे को मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कोई मानता है तो वो बराबर नहीं है। क्योंकि वहां शुभ भाव से मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन से ही ये कार्य शुरू होगा। जब हम ये पांच लब्धि का स्वरूप देखकर उपशम समित्व की चर्चा करेंगे, तब आगे किस तरह से वो कर्मों का अपकर्षण भी होता है, गुण श्रेणी की रचना भी कैसे होती है, आदि आदि बातें आएगी, तब वहाँ पता चलेगा कि ये किस तरह से अधिक मात्रा में कर्म निकल कर खिर जाते हैं। कितना भी बड़ा शुभ भाव करेगा तो कर्म तो बंधेगी, पाप प्रकृति नहीं बंधेगी, उतने काल तक शुभ प्रकृति बंधेगी, परंतु खिरेगा कितना, एक निशेक। हमने देखा था ना, एक समय में एक निशेक खिरता है, तो शुभ भाव किया तो भी एक निशेक खिरेगा, पाप भाव किया तो भी एक निशेक खिरेगा, परंतु अधिक मात्रा में कैसे खिरेंगे। तो जब विशुद्ध परिणाम होते हैं और वो अपकर्षण बहुत होता है, स्थिति कांड घात अनुभव कांड घात होते रहते हैं, और गुणश्रेणी निर्जरा आदि जो कार्य होंगे, तो उसमें बहुत यानी असंख्यात गुण परमाणु निकलते चले जाते हैं, तो उसी मार्ग से उसकी निर्जरा होकर कर्मों का जो सत्व है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की जो संख्या है वो घटती चली जाएगी। यानी सम्यक दर्शन से तो ये कार्य शुरू होगा, परंतु सम्यक दर्शन होने मात्र से मोक्ष नहीं होने वाला, ये तो आत्मा की पहचान हुई है बस। अब उसी आत्मा में यानी शुद्धात्मा में त्रिकाली जो अपना स्वरूप है उसी को जानते रहने में, उसको कहते चारित्र द्वारा, यानी आत्म स्थिरता द्वारा, आत्मा में ही एकाग्रता करने से यानी चारित्र द्वारा ही क्या होता है, यह कार्य कौन सा, निर्जरा का कार्य होगा। अधिक मात्रा में कर्मों का खिर जाना जो है वो आत्मा में स्थिरता होने से, वो स्थिरता भी अधिकाधिक बढ़ती जाने से ये निर्जरा का कार्य होगा और कर्मों की सत्ता में हानि होना शुरू हो जाएगी। उसके बिना अकेले शुभ भाव से, देखो हम कहते ना चारित्र मुनि दशा में चारित्र है, चारित्र है ना, वो स्थिरता को चारित्र कहते हैं। 28 मूल गुण धारण किए हैं इसलिए उसको चारित्र कह देते हैं, उसके द्वारा निर्जरा नहीं होती। हमारे पास गाय का चित्र है कैलेंडर पर, हम उसको गाय कह देते हैं, बराबर, उससे दूध मिलता है क्या? कहना तो व्यवहार है वहां, है ना, या मिट्टी का कोई खिलौना बनाए उसको भी हम गाय कहते हैं, परंतु दूध वहां से नहीं मिलेगा हमको, उस गाय से दूध नहीं प्राप्त होगा। वैसे 28 मूल गुण से को हम चारित्र कह देते हैं, वो कब कहेंगे, वो भी उसके साथ निश्चय चारित्र हो तब, परंतु वो व्यवहार चारित्र जिसको हम कहते हैं शुभराग जो है उससे तो बंद होगा, उससे तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो ये जो यहाँ जो चारित्र की बात की थी, आत्मस्थिरता को ही चारित्र कहते हैं और उसी चारित्र के द्वारा निर्जरा संभव है, यानी इसीलिए ये दर्शन और चारित्र को यहाँ लब्धि कहिए। हम मंगलाचरण में कह रहे हैं सम्यक दर्शन चरण गुण, दर्शन और चरण दोनों को लिया है, ज्ञान उसमें गर्भित है, जिसको सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र एक साथ है, परंतु वहां जो चारित्र को गुण कहा है वो अधिकाधिक आत्मस्थिरता। अकेले सम्यक दर्शन तो वो तो कोठे में कोठार में पड़े हुए अनाज समान है, जैसे मूंग पड़े हमारे घर में डब्बे में, तो वो तो उगते नहीं है, उसमें से कुछ अनाज नया नहीं पैदा होता, वो तो बोएंगे जमीन में तो उसमें से फिर पौधे निकलेंगे, उसमें से फिर अनाज भी तैयार होगा, फल फूल जो कुछ है तो वो बीज बोने पर मिलता है। वैसे सम्यक दर्शन से कुछ कार्य नहीं होता, सम्यक दर्शन के पश्चात जो अधिकाधिक आत्मस्थिरता है उसी से यानी वो जो मोक्ष मार्ग है वो आगे चलकर मोक्ष तक जीव पहुंचेगा। तो इसलिए यहाँ उसमें हमने देखा ना चरणधारी केवल लहे, चरण ने चारित्र, चारित्र धारण करके यानी अपने में ही एकाग्र होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी हमने मंगलाचरण में देखा था चरणधारी केवल लहे पावे पद निर्वाण, और निर्वाण की प्राप्ति होती है। यानी दर्शन और चारित्र को ही यहाँ लब्धि कही है, लब्धिसार ग्रंथ की बात चल रही है, उसी के आधार से हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ दर्शन को भी लब्धि कहा है और चारित्र को भी लब्धि कहा है, क्योंकि इन्हीं दो के द्वारा मोक्ष रूप लब्धि हमें प्राप्त होने वाली है। देखो ये किसी भी उच्च प्रकार के शुभ भाव द्वारा ये संभव नहीं है, इसीलिए लब्धिसार ग्रंथ में कहा है कि दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होना ही लब्धि है। लब्धि शब्द अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में या संदर्भ में शास्त्र में आता है। क्षोभसम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। क्षोभसम ज्ञान कैसा है उसका वर्णन आता है ना, तो उसमें क्षोभसम विशेष को लब्धि कहते हैं या उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के उगाड़ रूप जो शक्ति है उसे भी लब्धि कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, देखो विशिष्ट क्षोभसम है, अभी अपना ज्ञान कुछ प्रकट है, तो उगाड़ रूप जो शक्ति है, ज्ञान की उगाड़ रूप शक्ति है, उसको लब्धि कहते हैं। क्योंकि जो प्रकट ज्ञान की पर्याय है, क्षोभसम ज्ञान की बात चल रही है, क्षोभसम ज्ञान की जो प्रकट पर्याय है उसके दो भेद है, दोनों मिलकर उसको उस ज्ञान की पर्याय को बताया जाता है कि लब्धि और उपयोग। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, यानी जीव की जो ज्ञान की पर्याय है, क्षोभसम ज्ञान की पर्याय जो है वो लब्धि और उपयोग मिलकर होती है। ज्ञान का उघाड़ और उपयोग, अभी हमारा उपयोग शास्त्र में चल रहा है, शास्त्र का अभ्यास में हमारा उपयोग लगा हुआ है, परंतु अभी इसी समय में इसी प्रकट ज्ञान में बाकी सारा हमारा ज्ञान अन्य विषयों संबंधी चल रहा है, व्यापार संबंधी है, इतिहास संबंधी होगा, भूगोल संबंधी होगा, गणित संबंधी होगा, ये घर में जो कुछ अन्य कार्य करते उस संबंधी जो अपना ज्ञान है वो प्रकट है, प्रकट पर्याय में है, परंतु वो उपयोग रूप नहीं। तो ये उपयोग रूप ज्ञान और ये लब्धि रूप ज्ञान मिलकर भावेंद्रिय यानी क्षोभसम ज्ञान कहलाता है। तो क्षोभसम ज्ञान है वो लब्धि और उपयोग मिलकर है। तो केवल ज्ञान में लब्धि कितनी और उपयोग कितना है, केवल ज्ञान में? हाँ, केवल ज्ञान तो क्षायिक ज्ञान है, पूरा उपयोग रूप है, पूर्ण रीति से। ऐसा नहीं कि कुछ वो उपयोग को अन्य चल रहा है और अन्य सारा लब्धि में पड़ा, ऐसा उनका नहीं है। उनका एट अ टाइम एक ही समय में सभी बातें युगपत जानते हैं ना, तीन काल तीन लोक, तीन लोग यानी अलोका सहित लोक सभी, यानी सभी द्रव्यों की सभी गुणों को, उनके अनादि अनंत सभी पर्यायों को युगपत एक समय में एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं, ये केवल ज्ञानी। तो उनका तो क्षायिक ज्ञान है, और यह जो लब्धि उपयोग मिलकर जो भावेंद्रिय कहा, ये क्षोभसम ज्ञान की परिभाषा है, इसको क्षोभसम ज्ञान कहते हैं। परंतु उस लब्धि की यहाँ चर्चा नहीं है, अभी हम लब्धि के भिन्न भिन्न अर्थ देख रहे हैं। शास्त्र में लब्धि शब्द कहाँ कहाँ आता है उसकी ये चर्चा है, परंतु अपना पंच लब्धि में उस लब्धि की कोई उससे कोई लगता नहीं है, उसकी बात यहाँ नहीं है। अब अन्य कहाँ आता है लब्धि, कुछ लब्धि हुई, कुछ प्राप्त हुआ, रिद्धि प्राप्त होना ना, उसको भी लब्धि कहते हैं। जैसे गुण प्राप्ति के अर्थ में विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाली रिद्धि को भी लब्धि कहते हैं। ऐसे वैक्रेयिक रिद्धि प्राप्त हुई, आपको मालूम है कोई ऐसे पहचान वाले आपके जिसको वैक्रेयिक रिद्धि प्राप्त हुई थी? विष्णु कुमार मणि, वो उपसर्ग दूर किया था ना, ऐसा हाथ लंबा किए तो पूरा एक मनुष्य लोग पूरा व्यापार, हाँ शब्दन की कथा नहीं, तो उसको भी लब्धि कहते हैं। दूसरा लब्धि शब्द कहाँ आता है, तो ये जो पांच हमने देखे थे, अंतराय कर्म देखे थे और उसमें जो जीवों के गुण भी वहां देखे थे, तो ये जो दानांतराय आदि अंतराय कर्म की पांच प्रकृति के क्षोभसम या क्षय से प्राप्त होने वाले, हमने क्षोभसम भाव पर घटाया था, तो क्षोभसम से कौन से प्राप्त होते हैं, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, क्षोभसम रूप भाव, बारहवें गुण स्थान तक वो तो क्षोभसम रूप होते हैं। और जब केवल ज्ञान होता है तो उसके साथ साथ ये क्षायिक वीर्य वगैरह भी प्रकट होता है, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ वगैरह, तो उसको क्षायिक कहते हैं। तो ये जो अंतराय कर्म के क्षोभसम में जो प्राप्त होते हैं ये पांच, उसको कहते क्षोभसमिक पांच लब्धि, और जब इनका क्षय होने पर होते हैं तो उसको हम कहते क्षायिक लब्धि, यानी इन पांच गुणों के जो प्रकट रूप जो अवस्था है उसको भी लब्धि कहने में आता है। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इसकी प्राप्ति को भी लब्धि कहते हैं। अरिहंत भगवान को ऐसी कितनी लब्धि होती है मालूम है, नवक्षायिक लब्धि होती है। देखो अरिहंत भगवान की स्तुति में उनका वर्णन करते समय लिखा है नव केवल लब्धि रमाधरंत, यानी नव केवल लब्धि, केवल लब्धि नहीं क्षायिक लब्धि, नव क्षायिक लब्धि को धरने वाले, हाँ ऐसे अरिहंत भगवान है। यानी रमा यानी स्त्री, क्योंकि वो तो मुक्ति रूपी स्त्री, ऐसे भी वर्णन आते ना, तो लब्धि रमा, स्त्रियों की उपमा अनेक जगह दी जाती है। तो नव केवल लब्धि रमा धरंत अर्थात अरहंत भगवान के नौ क्षायिक लब्धि होती है। वो कौन कौन सी है, कौन कौन से क्षायिक भाव है अरियंतों को? हाँ, देखो हमने वो तो पहले में घाती कर्म देखे थे, उस पर क्रम से घटाना। घाती कर्म में थे मालूम है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय। अभी उस पर हम क्षायिक भाव घटाए थे हमने, उसको याद करो। ज्ञानावरण के क्षय में क्षायिक ज्ञान, फिर क्षायिक दर्शन, मोहनीय में भी दो है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, और ये पांच क्षायिक दान, क्षायिक दान लाभ, हाँ भोग उपभोग और वीर्य, हर एक के साथ क्षायिक क्षायिक लगाना, ये नौ क्षायिक भाव हो गए। तो ये इस अर्थ में भी लब्धि शब्द आता है शास्त्र में, परंतु वह अर्थ हम यहाँ नहीं ले रहे। हमारा तो लब्धि का अर्थ भिन्न ही है, परंतु ये शास्त्र में कहाँ कहाँ लब्धि शब्द यूज होता है वो हमें भी पता चलना चाहिए, क्योंकि लब्धि तो अलग 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 अर्थों में ये शब्द शास्त्र में आने वाला है। परंतु हमारा जो विषय पंचलब्धि है, वो कौन सी पंचलब्धि है? तो सम्यक दर्शन, वो कोई भी सम्यक दर्शन नहीं, ये हमारी यहाँ चर्चा है प्रथमोपशम सम्यक। प्रथमोपशम सम्यक तो जिसे प्राप्त होता है उस जीव को सम्यक तो प्राप्त होने से पहले पांच लब्धि होती है, उसके क्रम से ऐसे उसकी कुछ पर्याय होती है, उसको लब्धि कहा है। उन लब्धि के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, यानी जिसको सम्यक तो होता है उसके पूर्व में। अभी जब जब हम सम्यक तो कहेंगे तो यहाँ प्रथमोपशम सम्यक तो की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों, उसकी भी चर्चा आएगी, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो किसे प्राप्त होता है? वो तो क्षोपशम पूर्वक होता है, तो जो क्षोपशम सम्यक तो पूर्वक क्षायिक होता है उसको तो अभी वो तो ये तो देशना मिलनी चाहिए, प्रायोगिक लब्धि होनी चाहिए, वो ऐसी बातें वहां नहीं आएगी, वहां तो कोई अन्य क्रम होगा पर्यायों का, उसकी चर्चा तो उसके प्रकरण में कहेंगे। और क्षोपशम सम्यक तो प्राप्त करने वाला भी कोई तो पहले गुण समय सादी मिथ्या दृष्टि वाला वो प्राप्त करेगा, या कोई औपशमिक सम्यक तो में से क्षोपशम प्राप्त करेगा, तो उसके लिए भी वो पर्यायों का क्रम अलग होगा। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक तो कौन सा है? तो जो मिथ्यात्व अवस्था में से विशिष्ट कर्मों का उपशम करके जो सम्यक तो प्राप्त करता है उसको प्रथमोपशम कहते हैं। ये पहले में पहली कंडीशन, मिथ्यात्व में से उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है उसको प्रथमोपशम कहते हैं। तो उसके पहले ये जो पर्यायों का निश्चित क्रम है, सुनिश्चित क्रम, उसको यहाँ पांच लब्धि के रूप में हम देखने जाने वाले हैं। तो ये जो पांच लब्धि होती है, यानी ऐसा समझना कि जिसको प्रथमोपशम सम्यक तो होता है उसके पहले ये पांच लब्धि होती ही है, परंतु जहां चार लब्धि हुई इसलिए आगे पांचवी लब्धि और सम्यक तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है। जिसको करण लब्धि हो गई उसको तो आगे का होगा ही होगा, यानी जिसको पांचों ही लब्धि होती है उसको तो प्रथमोपशम सम्यक तो होगा ही, परंतु चार लब्धि तक आए हुए जीव को आगे चलकर सम्यक तो होगा ही, ऐसा नियम नहीं। ये तो क्रम से, ये तो इन बातों की तो हम चर्चा करने वाले हैं कि भव्य कहाँ तक जाएगा, अभव्य कहाँ तक जाएगा, किसको हो सकती है, कहाँ कब होती है, भव्य को भी होती है तो क्या क्या होता है, इसकी पूरी विस्तार से चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ तो ये जो सम्यक तो प्राप्त होने के पूर्व जो पांच लब्धि है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसके भी हम नाम देखते हैं, क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इसकी अधिक चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी इसके अभी जो हमने पढ़ा है उसमें कोई प्रश्न है तो पूछना। हाँ स्थिति का, हाँ आपका प्रश्न ऐसा है, जब स्थिति कांडक घात होता है तो ऊपर के कुछ निषेकों में से जिसको हम कांडक कहते हैं उसमें से परमाणु नीचे आते हैं तो दूसरे समय में वहीं से आते हैं क्या? ऐसा ही है, हम मान लेते हैं कि आठ कांडकों में ये आठ निषेकों में से परमाणु नीचे आने वाले हैं, आठ निषेकों का एक कांडक है ऐसा हम समझते हैं बराबर। तो पहले समय में इन आठों ही निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आए, दूसरे समय में उन्हीं आठ में से नीचे आ गए, तीसरे समय में उन्हीं आठ में से नीचे आए, इस तरह से हम मान लेते हैं कि चार समयों में ये पूरे ही पूरे परमाणु नीचे आ गए और ये आठों का ही नाश हो गया, अभाव हो गया। अपकर्षण में सर्वत्र से आते, अपने अपने नीचे के निषेकों में चले जाते हैं, हाँ विशुद्ध विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के कारण अपकर्षण भी विशुद्धि से होता है, परंतु यहाँ परिणामों की विशिष्ट विशुद्धि है, इतने सारे निषेकों का अभाव हो जाता है, स्थिति इतनी घट जाती है, आठ समयों की स्थिति घट गई। अभी हमने तो देखा था कि सागरों की होती है, तो एक एक निषेक खिरता तो अनेक सागर वर्ष लग जाते खिरने के लिए, परंतु ये स्थिति ऐसी घट गई कि अनेक सागर वर्षों की स्थिति घटकर उनके सारे ही परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिले, और उसके लिए काल लगता है एक छोटा अंतर्मूर्त, वो अंतर्मूर्त छोटा होता है, बहुत सेकंड का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। ऐसा नहीं है, अभी जो विशुद्ध परिणाम होते हैं तो उस समय क्या होता है, अपकर्षण भी चलता रहता है और स्थिति कांडक भी होता है, दोनों साथ में साथ होते हैं। यानी वहाँ क्या होगा, अपकर्षण में से ये सारे नीचे तक के सभी परमाणु जो जो निषेक है ना, अपने अपने नीचे उनका माल जला जाता है। हाँ ये तो प्रायोगलब्धि वगैरह में भी होता है ना, हो सकता है, मगर वहाँ भी उसके विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के द्वारा ही होता है। ये जो है अभी दसवें नंबर का निषेक है उसका माल उसके नीचे चला जाएगा, जो पंद्रहवें नंबर में है उसका माल उसके नीचे जाएगा, इसको कहते हैं अपकर्षण। ऐसे सर्वत्र जो परमाणु ऊपर तक जो निषेक है अपने अपने नीचे उसका माल चला जाता है। यानी इसमें ऐसा भी है, मान लो जो सौवें नंबर पर निषेक है उसका माल पचासवें में आ गया, और पचासवें का ऊपर से पचासवें में आ गया, और पचास का अपने जो परमाणु है वो उसके नीचे के परमाणु में निषेकों में चले गए। जैसे हम कहते हैं ना कि यानी जमा और खर्च करते हैं, आय और व्यय, वैसे यहाँ भी ऊपर के निषेकों में उसमें आ गए और उसमें से उतनी स्थिति वाले वो उसमें से और घट गए, वो और नीचे चले गए, ऐसा होता है। स्थिति कांडक में भी सर्वत्र चले जाते, सर्वत्र चले जाते, वो कहाँ कितने जाते हैं उसका भी प्रोपोर्शन है, उसका भी गणित है, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे चलकर। ये उत्कर्षण में ये समझना कि जब जब उत्कर्षण की चर्चा आती है तो उसमें नए बंध की अपेक्षा होती है, यदि नया बंध नहीं है तो वहाँ उत्कर्षण भी नहीं होगा। अनुभाग में स्थिति में ये खास है, अनुभाग में भी बढ़ेगा, क्योंकि अनुभाग में क्या है, पुण्य प्रकृति में अनुभाग बढ़ेगा और पाप प्रकृति में अनुभाग घटेगा। यानी ये जो स्थिति में खास है, नए जो बंध की अपेक्षा होती है स्थिति में तो है ही है, क्योंकि वो कम स्थिति वाला अधिक स्थिति वाला बन जाता है ना, उसमें तो ये अपेक्षा आती है, नए बंध की अपेक्षा वो उत्कर्षण में आ जाती है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा रे तू।